ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको बहुत सहज योगी जीवन दी है, लेकिन सहज योगी जीवन सहज योग के कारण कभी कभी अलबेली हो जाती है। इसलिए कुछ दिन पहले बाबा ने एक शब्द यूज किया कि बच्चे सहज योगी अलबेला बना देता, इसलिए श्रेष्ठ योगी बनो। श्रेष्ठ योगी और महातपस्वी, ये दो शब्द कुछ दिन पहले बाबा की अव्यक्त मुरली में आए थे, क्योंकि हमारा योग उस सर्वोच्च सत्ता के साथ, परम सत्ता के साथ है, जो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है। कई बार बाबा शब्द कह करके हम थोड़ा साधारण समझ लेते हैं, लेकिन बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचानना और पहचान करके उसको याद करना, इसमें सब नंबर वार है। योग कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा चिंतन कर रहे हैं, बहुत सारी शक्तियां हम सबके पास जमा हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। योग की शक्तियां असंभव को संभव कर सकती हैं, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमने अपने किसान भाइयों से योगी खेती में करके देखा। जिसको साइंस मानती नहीं, समझ ही नहीं सकती, क्योंकि केवल दिमाग की बात नहीं है, साइंस दिमाग को यूज करती है, माइंड को यूज करती है, लेकिन हमारा योग भावना को यूज करता है, दिल को यूज करता है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस है। केवल अगर दिमाग चलाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह असंभव बात है, तो कभी भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक गांव की अनपढ़ माता प्यार से बाबा 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 शब्द उच्चारण करती है और उसके सब काम सहज सफल हो जाते हैं। और एक बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान वो योग करते हैं तो उसमें सिर्फ मैं आत्मा और परमात्मा, एक सूखा योग, दिमाग को यूज करते हैं। बाबा ने हम सबको भावना और विवेक, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस की बात कही है। जब ये प्रोजेक्ट बना तो मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे। 2007 में हमने अपने गांव वासियों की सेवा के लिए एक अभियान निकाला और हमारा लक्ष्य था कि भारत के अंदर करीब 6.5 लाख गांव हैं और अधिक से अधिक गांवों में हम गांव वासियों की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? उनको हम व्यसनों से, बुराइयों से छुड़ाने की प्रतिज्ञा कराएंगे। उनके अंदर जो कई प्रकार की कुरीतियां हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, जो तंत्र मंत्र इनके पीछे लगे हैं, इनसे हम उन्हें मुक्त कराएंगे। कुछ ऐसे लक्ष्य लेकर के हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, मोटरसाइकिल के द्वारा अभियान निकाला और सभी स्टेट के अंदर पूरे एक साथ सभी का सहयोग लिया। पूरे भारत के सभी स्टेट्स ने इसमें सहयोग दिया और 3 मास तक लगातार गांव की सेवाएं इस अभियान के आधार से की गई। और जहां पर भी उद्घाटन और क्लोजिंग होता था वहां मुझे जाना होता था, तो मैं उसी दौरान महाराष्ट्र में कोल्हापुर, उधर कुछ शहर हैं, गांव हैं अलग अलग, वहां अभियान चल रहे थे तो मेरा जाना हुआ। तो जब मैं कोल्हापुर गया तो वहां पर कुछ किसान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई जी, हम एक नए प्रकार की खेती करते हैं, जिस खेती में हम कोई भी फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करते, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते, और हमारी दीदी ने, ब्रह्मा कुमारी बहन ने, हमें योग की विधि सिखाई है, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम योग का प्रयोग करो। और मैं करता हूं, मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन मेरे खेत पर एक बार इतने कीड़े लगे, इतना रोग आ गए, तो बहन जी ने कहा कि तुम बिल्कुल कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं डालना। मैं पढ़ा लिखा था, विज्ञान का स्टूडेंट था, मैंने कहा बहन जी मेरी फसल खत्म हो जाएगी, आप प्लीज ऐसा नहीं कहो। तो बहन जी ने कहा आप छोड़ दो और मेरे को केवल 5 दिन का समय दो, मैं 5 दिन योग का प्रयोग करूंगी और आपका खेत बिल्कुल निरोगी हो जाएगा। तो उस बहन ने 2 बजे योग शुरू किया, अपने 2-4 बहनों को साथ लेकर के, घर नहीं, सेंटर पर ही खेती को इमर्ज करके। तो किसान कहता है कि वो पहला मेरा अनुभव था कि वो रोग तो खत्म हुआ, लेकिन उसमें जो नए नए किल्ले निकलने चाहिए, गन्ने की खेती पर रोग लगा था, जो दवाई छिड़कने से वो पूरी फसल नष्ट हो जाती, दोबारा उसमें से किल्ले नहीं निकलते, फसल भी जाती और कीड़े में मर जाते। लेकिन बहन ने क्या उसमें योग किया, कैसे किया, जो उसमें कीड़े भी खत्म हो गए, रोग भी खत्म हुआ और उसमें नए नए और किले निकल आए और अच्छे फसल हो गई। तो मेरा विश्वास जाग गया कि ये कुछ तो चमत्कार हमारे योग में है। मैं बहुत समय से स्टूडेंट था क्लास का, योग करता था, लेकिन खेती पर योग का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से हमारी भावनाओं का प्रभाव खेत पर पड़ता है, मुझे विश्वास तभी हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी 11 एकड़ जमीन पर योगिक खेती, योग के द्वारा खेती करना शुरू किया है। आप चलो हमारे खेत पर, तो मुझे ले गया और मैं उसके खेत देखे तो बहुत सारी वैरायटी थी, एक नहीं थी, सब्जियां भी थी, जो कहता है यहां कभी नहीं होते वो धान भी थे, गन्ना भी था, कई प्रकार की अलग अलग सब्जियां थी। और भिंडी का जो उसका खेत था, भिंडी, तो जब मैं उस खेत में गया तो वो पौधे जो थे वो मेरे से लंबे थे, 5 फुट से भी ज्यादा लंबे थे और उसमें बहुत भिंडियां लगी थी। कोई रोग नहीं था, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं दिखाई दी। तो मैं उसके खेत में ऐसे चक्कर लगा रहा था, गया अंदर तो कहता है कि इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली है, कोई भी प्रकार की यूरिया या कोई दवाई का प्रयोग नहीं किया है, इस पर मैं सवेरे 4 बजे योग का प्रयोग करता हूं। तो मैंने कहा योग का प्रयोग और खेती से क्या कनेक्शन है इसका? हमारे संस्कार, हमारे संबंध, हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें योग के प्रयोग से हटती हैं। ये अनुभव तो हमको है, लेकिन खेत और योग, उसकी बात सुनता गया मैं। फिर बोलता है, बैंगन की खेती में ले गया मुझे, कहता भाई जी इस पर जो मैंने प्रयोग किया है वो बड़ा अचंभव, बिल्कुल असंभव जो था वो भी हुआ है। इस पर क्या प्रयोग किया है, कहता है ये जो बैंगन आप देख रहे हैं वो हरे वाले बैंगन थे, ये सबसे पहले मार्केट में जाते ही बिक जाते हैं, और इस पर हमने प्रयोग किया है कि ये बैंगन की सब्जी जो खाएगा वो शाकाहारी बन जाएगा, नान वेज छोड़ देगा। कहता है इसको जो खाता है उसके घर में एकदम शांति पवित्रता आ जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। और किसान की भावना थी, और उसी भावना से कहता सबसे पहले बिक जाता, और आने वाले कहते हैं जब से हमने ये सब्जी खाई है तब से हमारे घर में बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है, बहुत सब प्यार से खाते हैं। तो अनुभव सुनता था तो मुझे हंसी भी आती थी कि ऐसा भी होता होगा, लेकिन उसने बहुत निश्चय पूर्वक, फिर कहता है एक नहीं मैं हूं और भी कई किसान यहां कर रहे हैं, फिर मेरे को और दो तीन खेती में ले गया इधर उधर। तो ये सब संकल्प लेकर के मैं मधुबन में आया, और मोहिनी बहन जी हमारी अध्यक्ष थी ग्राम विकास की, मैं तो कोऑर्डिनेटर था, उनसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे किसान वहां खेती कर रहे हैं, यौगिक खेती है, कहती तुम उनसे और जानकारी लो क्या क्या करते हैं। फिर ड्रामानुसार उसी मास में मुझे और उसी तरफ जाना हुआ, एक ही मास में दूसरी बार मैं गया। फिर मैंने जितने किसान कर रहे थे और कुछ वैज्ञानिक से जो हमारे साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के, वो उनको गाइड करते थे, सबको पूना में बुलाया एक भाई के घर में, और हमने कहा सब लोग यहां इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे, इस पर राय करेंगे क्या करना चाहिए। तो उसी मीटिंग के अंदर ये नाम निकला कि हम सब शाश्वत योगिक खेती इस प्रोजेक्ट को नाम दें, और किसानों की भलाई के लिए, क्योंकि आज किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन जितना खर्चा और जितनी मेहनत है उसको उतनी आमदनी नहीं है, प्राप्ति नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, और विशेष करके महाराष्ट्र क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र जो है, नागपुर वर्धा इस तरफ का क्षेत्र जो है, वहां पर प्रकृति बहुत नुकसान कर रही है। अभी सांगली कोल्हापुर में बाढ़ आई, और इतनी बाढ़ आई जो सैकड़ों गांव डूब गए, और वहां पर पानी अभी भी ट्रेन से जा रहा है उन गांव में, माना पानी बरसा ही नहीं है। तो प्रकृति बहुत नीचे ऊपर है। अब ऐसे किसानों को ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान सुनते नहीं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि सारी फसल खत्म, कर्जा लेकर के खाद लाए, दवाई लाई, महंगे महंगे बीज डाले, बहुत खर्चा किया और पैदावार बिल्कुल नहीं होती, कर्ज के अंदर दब जाते, सरकार कितना मदद करेगी। तो कई लोग बहुत दुखी होकर के आत्महत्या कर लेते, बहुत परेशान होकर के। तो इसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट बना, और उस प्रोजेक्ट को लेकर के हमने बहुत सारे प्रांतों में किसान सशक्तिकरण अभियान निकाले। पहले गुजरात से ही शुरू किया, गुजरात में चार यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर की, और जब पहली यूनिवर्सिटी में हमारी बहनों ने जाकर के बात की, वहां के साइंटिस्ट सरदार जी थे जो एग्रोनॉमी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को बड़ी हाईलाइट कर दिया, कहते हाँ हो सकता है, हमारे भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है प्रकृति पर, पेड़ पौधों पर, उन्होंने सपोर्ट किया। जबकि दूसरे वैज्ञानिक इस बात को सुनते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च करो। अब रिसर्च करने के लिए फिर तीन प्लाट हमको उन्होंने बना के दिए, तीन प्लाट के अंदर एक प्लाट पर हमने केवल ऑर्गेनिक पर योग के प्रयोग कराए, एक को ऑर्गेनिक रखा और एक पर केमिकल का प्रयोग करवाया। बीज एक ही, जमीन एक जैसी, लेकिन जिस पर योग का प्रयोग बहनों ने करके दिया, क्या प्रयोग किया? जो बीज बोना होता है उसको पहले बीज ट्रीटमेंट करते हैं, बीज संस्कार उसको बोलते हैं, तो उस पर कई प्रकार के दवाइयों का लेप करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक चीजों का लेप करते हैं, और हमें जो बीज दिए गए उस पर हमने केवल योग करवाया। योग केवल 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन, जितना समय हमारे पास बोने के पहले होता है, और वो बीज बाबा के कमरे में मेडिटेशन रूम में रख के उस पर एक छोटी सी शिव बाबा की झंडी लगा के सवेरे सवेरे जब योग करते हैं तो ये शुभ संकल्प देते हैं कि परमात्मा की सर्व शक्तियां इस बीज को शक्तिशाली बना रही हैं, और ये बीज बहुत समर्थ, अपने आप में सशक्त है, भरपूर है, और इसके अंदर जो फसल आएगी, जो बीज से पौधा निकलेगा, बहुत शक्तिशाली होगा, निरोगी होगा, और जो फसल तैयार होगी उसको खाने वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसे बहुत सकारात्मक विचार और बाबा की शक्तियां जैसे आ रही हैं और बीज को शक्तिशाली बना रही हैं। तो पहले छोटे छोटे पार्ट्स में, गमलों में प्रयोग करवाया, साइंटिस्ट तो अपने ढंग से करते हैं, तो 100 बीज अपने यौगिक खेती के, 100 बीज केमिकल के, 100 बीज ऑर्गेनिक खादों के, 5 के अंदर उगाए गए। तो उसमें 95 से 98% यौगिक खेती के बीज अंकुरित हो गए, और उनके बीज 60 या 65% हो गए, उगने में अंतर आया। अब जब उगने के बाद उसकी जड़ें दिखी, जड़ों की नाप ली गई, तो सबसे पावरफुल और लंबी जड़ें जो थी वो योगिक खेती की थी, ये जिस पर योग किया गया था। अब साइंटिस्ट इस बात को समझ नहीं पाते, कहते किस वायुमंडल में आपने रखा था, आपने क्या किया इसके ऊपर, कौन सा चमत्कार हुआ, हम इतनी दवाइयां डाली, इतनी खाद डाली, लेकिन इतने बीज निकले और इसके पौधे, इसकी जड़ें कमजोर हैं। तो हमने कहा इस पर रिसर्च करो, प्रयोग करते रहो। तो 5 साल की हमने एग्रीमेंट की, लिखा पढ़ी की, पूरा ही क्या क्या हम करेंगे, क्या साइंटिस्ट करेंगे, क्या उनके किसान करेंगे। तो 5 साल में 2 साल तक तो नॉर्मल रिजल्ट आई, लेकिन उसके बाद केमिकल वाले से हमारा अच्छा हो गया, ऑर्गेनिक वाले में दीमक लगी, और हम तो दीमक की दवाई मारने की नहीं डालते, लेकिन हमारे यौगिक खेती में दीमक प्रवेश नहीं हुई, आई नहीं। तो वो भी सोचने लगे क्या है आखिर ये योग, कैसे करते हैं। 5 साल की रिजल्ट हमें मिली और बहुत अच्छी उसकी रिजल्ट थी, यहां दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी की। उसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां की साइंटिस्ट बहनें ज्ञान में चलती थी, मेरे पास आई और मैंने उनको ये बात कही, तो पहले तो उन्होंने हंसी में उड़ा दिया, ये सब साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। हमने कहा क्या बात है, आप प्रयोग तो करके देखो, जब बात हो रही है और वो रिजल्ट है हमारे पास, तो क्यों आप नहीं कर सकते। उसको बहुत फोर्स दिया, और फिर मैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में 2 बार लेक्चर करने गया। वहां जब गया तो साइंटिस्ट के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत चर्चा हुई, और उस बहन ने कहा कि मैं अपने 2 बहनों से इस पर MSc कराऊंगी। तो उसने पॉट पर ही, क्योंकि लैब के अंदर ही इस पर रिसर्च होती है, प्लाट के अंदर जाने के पहले, उन दोनों बच्चियों ने उसमें MSc किया और पास हो गई। उसकी फिर थीसिस बनी, कैसे योग किया, कब किया, कितना समय किया। बीज संस्कार हम मधुबन से करके उनको भेज देते थे, क्योंकि वहां योग बच्चियों को तो इतना आता नहीं था, लेकिन बीज हमारे पास आ जाता था यूनिवर्सिटी से, बाबा के कमरे में 15 दिन 10 दिन रख करके चार्ज करके फिर उनको हम भेज देते। तो उसकी उनको बहुत अच्छी रिजल्ट की, अभी वो एक बहन PhD कर रही है उस पर। उसके बाद हमने साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई, सारे भारत के वाइस चांसलर्स की, उसमें हमने अपने साइंटिस्ट और अपने अधिकारियों को, कृषि अधिकारियों को भेजा, कि आप इस बात को उनके सामने रखो। तो जब उनके वाइस चांसलर के बीच में बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि आप गुजरात की सभी यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च करो। गुजरात में 4 यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की 4 यूनिवर्सिटी, चारों में दोनों जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो कन्विंस हो जाते हैं तो साइंटिस्ट सहयोग देते हैं। तो अभी हमारी 8 यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, अलग अलग फसलों पर चल रही है। हमने गोधरा में आनंद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 जगह रिसर्च शुरू की है, नौसारी में शुरू की, जूनागढ़ में शुरू की, और महाराष्ट्र में राउरी में शुरू की, जहां जहां हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी, परभणी में शुरू की, कुछ गेहूं पर किया, मूंगफली पर किया, चने पर किया, मक्का पर किया, सब पर प्रयोग किया है, और सबके रिजल्ट। अभी वो कहते हैं कैसे हम दूसरों के आगे रखें, आपने क्या किया इसके अंदर। क्योंकि हमारे भाई बहने केवल हफ्ते में एक दिन गुरुवार के दिन जाते हैं खेत पर और बहुत अच्छा दरी बिछा करके वहां योग करते हैं, 20 संस्कार करके दे देते हैं, और उसके बाद हफ्ते में एक बार जाते हैं, और सेंटर पर बहने 10 मिनट उस फसल को इमर्ज करके योग कराती हैं। तो बहुत शक्तिशाली बाबा की परमधाम की किरणें, लाइट उनको पर पड़ रही है, और पौधा बहुत शक्तिशाली हो रहा है, फसल बहुत अच्छी आ रही है, शुभ संकल्पों का दान करते हैं। उसके कारण जब मक्का पैदा हुई है गोधरा में तो वो केमिकल वाले से अधिक हो गई है। अब वो कहते हैं कैसे हुई, क्या किया आपने, कोई खर्चा नहीं किया, कोई दवाइयां नहीं डाली, कोई भी प्रकार के साधन नहीं यूज किए, सिर्फ गोबर के द्वारा, गाय का गोबर, उसको हमने सिर्फ उसको नाम देते हैं जीवामृत, जिसके अंदर गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और किसी उपजाऊ जमीन की मिट्टी, 5 चीजें मिला के एक हफ्ता तैयार करते हैं, और उसी को पानी के साथ मिला करके खेत को 15 दिन में एक बार शक्ति देने के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई कीड़े लग जाते हैं तो ऑर्गेनिक नीम का प्रयोग करते हैं, या कोई ऐसी कोई दवाई घर में पत्तों के जड़ों से बना करके और उस दवाई का प्रयोग कराते हैं। वो किसान खुद करते हैं, किसानों को मैं उसकी ट्रेनिंग नहीं देता। हमारा कार्य है योग के प्रयोग कराना। योग एक इतनी अच्छी शक्ति है, अगर हम सब मन को एकाग्र करके कोई भी शुद्ध संकल्प कर लें तो वो संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं, लेकिन बहुत निश्चय और भावना चाहिए। जरा भी संशय के संकल्प पैदा न हो। अगर एक भी कोई नेगेटिव विचार वाला पूछता है तो वो भी एक विघ्न बन जाता है। उसके बाद फिर हमने कहा हमारे फार्म है तपोवन में, 70 एकड़ जमीन है। हमने निर्भय भाई को, वहां के भाइयों को बोला, हमको यहां से केवल 5 एकड़ जमीन दो। 5 साल से हम वहां पर भी प्रयोग कर रहे हैं, 5-6 एकड़ जमीन हमको मिली है। हम शुक्रवार के दिन अपने भाइयों को, ग्रुप को भेजते हैं योग करने के लिए, चारों तरफ बैठ करके वहां योग करते हैं, घर से भी उस पर कभी कभी शकाश देते हैं। फिर सोलार में अभी हमने शुरू कराई है, सोलार में भी कई जगह पड़ी है खाली, वहां पर भी योग के प्रयोग चल रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि एक ऐसी अच्छी विधि है जिससे किसानों के खर्चे बच जाए और अच्छी पैदावार हो, क्योंकि सारी बीमारियां, सारे रोग, धरती की शक्ति जो खत्म हो रही है वो केमिकल के प्रयोग से हो रही है। आप सबने शायद न्यूज सुनी होगी, अभी हमारे प्रधानमंत्री को बहुत उमंग है कि हम अपने भारत को ऑर्गेनिक भारत बनाएं, क्योंकि कोई भी चीज जो फर्टिलाइजर से पैदा की जाती है वो इम्पोर्ट नहीं होती, बाहर वाले लेते नहीं है, बाहर की पैसे की जो आवक है बंद हो रही है। आम वगैरह होते हैं, अगर उस पर दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाता है, कोई भी फसल बाहर अगर भेजी जाती है और वो केमिकल वाली है तो विदेश अभी बिल्कुल उसको लेता नहीं है। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छी इस बात को ध्यान दिया है, उसके लिए उन्होंने सब्सिडी दी है, पूरा ही सिक्किम प्रांत, सिक्किम पूरब के अंदर है, उसको ऑर्गेनिक बना दिया है इस समय। और अभी अभी 15 अगस्त को उन्होंने जो भाषण किया है उसमें बहुत फोर्स किया है कि हमारे किसानों को सबको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि धरती माँ है और माँ को हमें जहर नहीं देना है। जहर जो डाल रहे हैं, जो केमिकल्स डाल रहे हैं, इससे धरती के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो रहे हैं, और वो जहर खादों के द्वारा, पानी के द्वारा नदियों में जाता है, कुओं में जाता है, पानी दूषित हो गया। शायद आप सबने सुना होगा, आजकल महाराष्ट्र का गेहूं, महाराष्ट्र का अनाज कोई भी प्रांत नहीं ले रहा है, और पंजाब वाले, पंजाब जो प्रांत है उसमें हर घर में कैंसर पेशेंट है। पानी खराब हो गया, अनाज खराब हो गया। मधुबन में हम लोग पहले 25-20 साल पहले हम खुद गए हैं गेहूं खरीदने के लिए, वहां से गेहूं लाते थे, लेकिन आजकल पंजाब का गेहूं पंजाब वाले खुद भी नहीं खाते हैं, दूसरे प्रांत से मंगा के खाते हैं और अपना दूसरी जगह भेज देते हैं। इतना केमिकल यूज किया है जो पानी जहरीला हो गया है, धरती खत्म हो गई है, और फसल जब पैदा होती है तो कीड़े लगते, और कीड़े आते हैं तो कहते हैं हम कितनी महंगी महंगी दवाइयां डालते, लेकिन वो मरते नहीं है, वो असली दवाई है या नकली दवाई है मुझे पता क्या। बहुत दुखी किसान है, बहुत परेशान। हम सम्मेलन करते हैं, अभियान निकालते हैं, अभी जब मैं निकला हूं तो मेरे 7 अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहे थे। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रांत है, छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर उसकी राजधानी है। वहां पर हमने 7 अभियान निकाले, राजस्थान में अभी 5 अभियान चले, उसके पहले हमने झारखंड लिया, बिहार लिया, अभी महाराष्ट्र में करना है 32 अभियान का प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन वहां इलेक्शन है अक्टूबर में, इलेक्शन के कारण अभी हमने उसको पोस्टपोन किया है, और नवंबर में हम पूरे महाराष्ट्र में अभियान निकालेंगे। अभियान के अंदर हम अपनी 2 गाड़ियां सजाते हैं, उसमें 10 हैंड्स देते हैं, 10 हैंड्स में हमारा लक्ष्य तो किसानों को योगी बनाना है, हमारी अंदर की जो भावना है। किसान अगर योगी बन जाए, चरित्रवान बन जाए, वो बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा ये जो व्यसन करता उनसे मुक्त हो जाए, और जो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ पैसा, उन भावनाओं से मुक्त हो जाए तो उसकी फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग आध्यात्मिक हैं, हमें कोई उनसे खेती कराने की बातें नहीं करनी, लेकिन जो हमारे किसान हैं वो जब अपना अनुभव उनके आगे रखते हैं कि हम ऐसे खेती करें आप करके देखो, तो इसी बहाने बाबा का संदेश जा रहा है घर घर के अंदर। जो साइंटिस्ट सुनते नहीं थे अभी भाग भाग के आते हैं सुनने के लिए कि क्या योग है, कैसे आप योग करते हो, किस तरह से प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से साइंटिस्ट का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, और किसान भी गवर्नमेंट के खर्चे से, हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वहां 75 बड़े बड़े उनके जोन बने हैं, बहुत बड़ा यूपी उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी बाबा का बच्चा है, लखनऊ में रहता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत सारे लोग हैं, तो उसने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और सरकार की सेवा की, विशेष करके जो योगी आदित्यनाथ थे उनको बताया, वहां के वैज्ञानिकों को साथ लिया, और सरकार के सहयोग से हर गांव तक पहुंचने का प्रयास किया गया है कि हम उनको जागृत करें, उनको बताएं कि केमिकल से कितने नुकसान हो रहे हैं, धरती माँ की शक्ति खत्म हो रही है, और जो कुछ उससे पैदा होता है उसको खाने वाले सब रोगी हो रहे हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और साथ साथ उनका चरित्र अच्छा हो जाता है, उनके व्यसन छूट जाते हैं, कई प्रकार की कुरीति कुरीवार से मुक्त होते हैं, और हमारे बाबा का उन तक संदेश पहुंच रहा है। तो हम इस उद्देश्य से, इसी लक्ष्य के साथ हम गांव-गांव में जाते हैं, प्रयोग कराते हैं और किसानों को योगी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान को याद करने के लिए टाइम है, केवल थोड़ी मेहनत है। किसान आज मेहनत नहीं करना चाहता। कारण यह है कि वो अपने आप को क्यों नहीं चेंज कर पा रहा है, क्योंकि वो सोचता है यूरिया लाए, केमिकल दवाइयां लाए और खेत में छिड़क दिया, फिर ही हो गए। अब इसके लिए उसको गोबर उठाना, गौमूत्र इकट्ठा करना, गाय पालना, केचुए की खाद तैयार करने के लिए बर्मी कंपोस्ट तैयार करना, इधर उधर के कीचड़े को इकट्ठा करना, बहुत मेहनत है और मेहनत कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जो किसान इस फायदे को समझ गया है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक की कीमत डबल मिल रही है, जो केमिकल वाला है उससे डबल कीमत पर जा रहा है, भले हमारे पास सर्टिफिकेट हो या न हो। हमारे पास एक गोंदिया प्रांत है, सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एक बाबा का बच्चा है जिसने 200 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक पर योग के प्रयोग किए, ऑर्गेनिक कर रहा है, दवाइयां उसके पास ऑर्गेनिक खुद है, फैक्ट्री है और हर चीज। मैं 2 या 3 बार उसके खेत पर जा चुका हूं, मैं देखता हूं। आपको बताऊं, एक भुट्टे, एक मक्का का पौधा, उसमें 4-4 भुट्टे लगे हुए हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। पपीते इतने नीचे से ऊपर तक लगे हुए हैं, कोई भी चीज आप उसके फार्म में अगर एक बार चले जाओ तो लगेगा सचमुच कैसा ऑर्गेनिक और यौगिक का सुंदर फल है, सब्जियां हैं, क्या ट्रक के ट्रक सामान निकलता है। अभी सरकार उसको बुलाती है मीटिंग के लिए, वहां से कहती आप आओ मीटिंग करो हमारे साथ। तो बाबा का वो बच्चा बहुत निश्चय बुद्धि है, बहुत भावनात्मक है और बाबा के झंडे लगाए हैं खेत के अंदर, सबको ट्रेनिंग देता है। तो ऐसे हम जगह जगह पर अभी सोच रहे हैं कि हम बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके सरकार को, किसानों को वहां पर ट्रेनिंग दें। तो ऐसे कई स्थानों पर अभी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कई स्थानों पर बने हैं। इसमें भावनाएं क्या प्रयोग में करते हैं, क्या सफलता मिलती है, मैं आपको बताऊं। एक भाई ने करीब 12-13 एकड़ जमीन में अमरूद का बगीचा किया, और आप सब जानते हो जो अमरूद है उसको तोता बहुत खाता है प्यार से। तो उस भाई ने कहा कि सारे जो आजू बाजू में अमरूद के बगीचे थे, उन लोगों ने तोते को भगाने के लिए नौकर रखे थे, उनको पेमेंट दे रहे थे नौकर को कि आप बजाते जाओ, ढोल बजाओ तो वो तोता भाग जाए। उस किसान ने कहा कि उनका भी अधिकार है, हमारा जो योगी किसान था, कि ये बेचारे कहां जाएंगे, इनका भी हिस्सा है, मैं बाबा से कहता हूं इनको 10% का हिस्सा मैं देता हूं अपनी खेती से, ये हमारे पूरे बगीचे को खराब ना करें। जिस पौधे पर, जिस फल पर बैठे, जिसको खाएं, वो 10 दिन 15 दिन लगातार खाएं, गिराएं नहीं। बहुत शुद्ध संकल्प से कहता, आते हैं तोते हमारे खेत में, बड़ा मनोरंजन करते हैं, खाते हैं प्यार से, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, कितना मनोरंजन करते हैं। मेरे को बुलाया उस खेत के अंदर, कहता मैं पिकनिक रखूंगा, आप आएंगे? हमने कहा आएंगे, राजस्थान में टोंक में, जयपुर के पास है। मैं गया वहां पर, 700 भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन लिखा उसी बगीचे के अंदर। तो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ आ गए, तो बच्चों को अमरूद देख करके तो लालच आ गया, तो तोड़ने लगे, कोई जेब में इधर डाले, कोई इधर डाले। तो मेरे मुख से निकला, इन बच्चों को मना करो ना, रोक दो, नहीं तो आपका बगीचा खराब कर। कहते कितना खाएंगे, ले जाने दो, बाबा और दे देगा। मना, उसने इतनी बड़ी दिल से सबको खिलाया, सबको ले जाओ जितना ले जाना है, पंछियों को छुट्टी दी, खाओ। कहता है जो वहां 15-20 हजार की आमदनी होती थी, 3.5 लाख रुपए का अमरूद गया हमारा, इतना अमरूद हुआ, और इतना मीठा, कहता मार्केट में जाते ही मिल जाता है। ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है। एक भाई कहता है कि हमारे खेत के अंदर वो जंगली सुअर घुस जाते थे। मैंने बाबा को बोला, बाबा ये आपकी फसल है, मैंने मेहनत की है, इनका अधिकार तो है, लेकिन ये खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए। कहता मैं सवेरे सवेरे बाबा की याद में जाता हूं, एक संकल्प करता हूं, जब लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए रेखा खींच दी तो क्या मैं अपने खेत पर शुभ संकल्प की रेखा नहीं खींच सकता हूं। कहता है मैं योग करके चक्कर लगाता हूं, परिक्रमा देता हूं, हमारे खेत के चारों ओर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, अगर बहुत भूख होगी, कुछ खाना होगा तो कोने में खा करके चले जाते हैं, नुकसान नहीं करते। ये हमारे शुद्ध संकल्पों का प्रभाव है, ये शुद्ध संकल्पों का घेरा है और किसानों के निश्चय हैं। ये बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे आप कभी सुनो आकर के हमारे ऑफिस में बैठ करके, मुझे बड़ी खुशी होती है। फसल खत्म कर देते हैं, घुस गए मानो, खा के खत्म कर देंगे, उखाड़ देंगे जमीन से, उनका जमीन खोदने का काम होता है ना। सुअर क्या करता है, मुंह में जमीन में मुंह डाल करके फसल को खत्म कर देगा, खाएगा नहीं लेकिन नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे जो नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं उनको भी उन्होंने कंट्रोल किया, बंदरों को भी कंट्रोल किया और प्रकृति को कैसे साथी बनाया। कहते एक बार हमारे आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान बहुत आते हैं, तो ये काकीनाड़ा की तरफ एक बहन है, शायद नाम सुना हुआ, रजनी बहन है, तो वो हमारे ये प्रोजेक्ट से जुड़ गई और उसने करीब 8-10 किसानों को तैयार किया। वहां धान की खेती होती अधिक, चावल, तो कहती चावल तैयार था, फसल तैयार थी, समुद्री तूफान आ गया और समुद्र ने सबकी फसल को डुबो दिया। अब वो किसान बड़ा भावना से, बाबा मैंने आपके योग में बैठ करके इतनी मेहनत से खेती की है, मेरी खेती खराब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको इससे हमको फसल देनी है। कहता वो उधर तूफान आया है, पानी बड़ा भरा हुआ है, उधर वो योग में बैठा हुआ है, बाबा को याद कर रहा है। कहते जब समुद्र का पानी उतर के गया, सबकी फसलें खराब हुई, उसकी फसल फिर से खड़ी हो गई। ये असंभव सी बातें सुनता हूं तो लगता है कि क्या शक्ति है योग के अंदर। कई किसान कहते हैं जो ओला पड़ जाता है ना बरसात के साथ, पत्थर पड़ जाते हैं बर्फ के, उसके किसान के जो योग करते हैं, जिनके खेत पर बाबा का झंडा है, जो खेत पर जाकर के परिक्रमा करते हैं योग में शांति से, चारों तरफ से ओला पड़ता है, उसके खेत में नहीं पड़ता है। हम कहते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। शायद आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जब 2000 में ये भूकंप आया था कच्छ भुज में गुजरात के अंदर, मैं 3 दिन के बाद दादी ने हम लोगों को भेजा, जाओ तुम देखो अपने बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ, मदद करो, पानी लेके, खाना लेकर के, कपड़े लेकर के। हम सब मधुबन वाले भूकंप के एरिया में गए, आदिपुर, कच्छ, भुज, और हमारा जहां से एंटर है भुज के अंदर, बहनों को तो पता भी नहीं चला भूकंप आया, जबकि आधा शहर गिर गया, आधा शहर पट था, एक भी मकान नहीं था। और बहनें सोच रही हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पानी क्यों लीक कर रहा है। जिस आदिपुर के अंदर सारा ही शहर नीचे पड़ा हुआ था, वहां पर बाबा का झंडा जिस पर लगा था, वो मकान पुराना था, सिर्फ दरार आई, वो गिरा नहीं। क्या चमत्कार होगा, बाद में गिराना पड़ा उसको क्योंकि सारा शहर नया बसा। तो जहां पर योगी आत्माएं तपस्या करती हैं, जहां पर वो प्रकृति को अपना योगदान दे रही हैं, प्रकृति कहीं भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद बाबा की ऐसी मुरलियां आपने नोट की होंगी, अव्यक्त बाबा ने बताया है कि जहां पर मेरे योगी बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं, अगर पानी का तूफान भी आ रहा होगा तो वो सामने रुक जाएगा, उनको नुकसान नहीं करेगा, उनको डुबोएगा नहीं। अभी अभी जो यहां पर नीमच में एमपी के अंदर तूफान आया, बाढ़ आई, 10-10 फुट पानी सेंटर पर भरा और बाबा की सुंदली और बाबा का फोटो हिला भी नहीं, ऐसे रखा रहा, सारी फ्रिज तैर रही है और सब गद्दे रजाई सब तैर गए, सबके सब ऊपर चले गए पानी में, बाबा का फोटो देख करके जब टीवी वाले गए हैं, संदली नहीं हिली है, बाबा का फोटो नहीं हिला। कहते हैं क्या चमत्कार है, कैसे ऐसा हो रहा है। जहां पर पवित्र संकल्पों की ऊर्जा है, वो ऊर्जा उस स्थान को बहुत शक्तिशाली बना देती है। इसलिए योग कोई साधारण नहीं है जो हम भगवान की शक्तियों को अपने अंदर कैच करते हैं। जहां पर 25-30 योगी तपस्या करते हैं, अच्छी तरह से योग करते हैं, उस स्थान पर कोई भी प्रकृति का तत्व नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसा समय आ रहा है, समीप आ रहा है, जो आप योग के प्रयोग करके इन प्रकृति के तत्वों को शांति का दान दो। ये बहुत उछलने वाले हैं, बहुत तूफान लाएंगे, लेकिन जहां पर मेरे योगी बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं, तत्व उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। बहुत भावनात्मक रूप से बाबा को याद करो। बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ पहचान करके याद करो। सिर्फ ऐसे आकर के बैठ गए, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, योग माना वैरायटी करो, नवीनता से करो, थको नहीं, बोर नहीं हो जाओ। अगर अच्छे प्रयोग किए जाएं, आज देखो हार्ट के कितने पेशेंट योग के प्रयोग से ठीक हो रहे हैं। बीके जो हैं बाबा के बच्चे, उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है, और नान बीके आकर के उनको भावनात्मक रूप से सिखा करके बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं, है ना। भावना चाहिए। हजार से ऊपर पेशेंट जिनकी आर्टरीज 80-90% ब्लॉक थी, 6 मास उन्होंने इस योग का अभ्यास किया, डाइट पर ध्यान दिया और एक्सरसाइज की। केवल कैड प्रोग्राम के 3 बातों को पूरी रीति से जिन्होंने पालन किया, 6 मास के बाद वही एंजियोग्राफी बता रही है उनकी आर्टरीज एकदम ओपन हो गई। उसके कितने सारे साइंटिस्ट अभी इकट्ठे होते हैं, अमेरिका से भी जाते हैं हार्ट वाले डॉक्टर्स, कहते ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि शुद्ध संकल्प में, पवित्र विचारों में इतनी बड़ी शक्ति है जो कोई भी असंभव को संभव किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता है मन बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता की। बहुत स्वच्छता से, दिल से बाबा कहो, बाबा की शक्तियों को एकाग्र करो और एकाग्रता के साथ योग करो। जितनी एकाग्रता और स्थिरता है, उतना बाबा की शक्तियां ट्रांसफर होंगी, और वो ट्रांसफर हुई शक्तियां जिधर आप संकल्प करोगे उधर वो कार्य करना शुरू कर देंगे। सोलार एनर्जी क्या है? आज सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, कहीं अग्नि पैदा करती हैं, लेकिन वही सूर्य की किरणें एक साफ स्वच्छ कांच के ऊपर जब पड़ती हैं, और कांच के थ्रू जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो पानी के पाइप को भाप बना देती हैं, बैटरी चार्ज कर देती है, अग्नि पैदा कर देती है। हम सब बाबा की शक्तियों को अपने कांच पर, पवित्र मन पर, स्वच्छ मन पर, न कोई से नफरत, न कोई से ईर्ष्या, सबका पार्ट अपना अपना है, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प से जितने अच्छे विचारों में हम रहते हैं, बाबा की शक्तियां आती हैं और वो शक्तियां अपने आप चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती। संबंधों पर प्रयोग करके देखो, संस्कारों पर प्रयोग करके देखो, जहां पर प्रकृति के कोई तत्व आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर प्रयोग करके देखो। बाबा ने हम सबको इन प्रकृति पर जीत पाने के लिए प्रकृति जीत का टाइटल दिया है। भविष्य की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान समय 3 प्रकार की प्रकृति पर हमें जीत पानी है। 1 प्रकृति हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, वो भी प्रकृति है, जिसको कहते हैं नेचर। कोई भी बात होगी कहेंगे मैं चाहता नहीं हूं, मेरी नेचर है, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन नेचर है, मैं क्या कहूं। इस प्रकृति को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम योग के प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक नेचर बदलेगी नहीं। और नेचर कैसे बनी हम सब जानते हैं, पास्ट की नेचर लेकर के नहीं आए हैं। जिस तरह की पालना मिली, जिस तरह की परवरिश मिली, जिस परिवार और कुल में हम पले हैं, उसी तरह की हमारी नेचर बनती गई है। आज कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, उसके पास बैठने का खाने का ठीक ढंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उस बच्चे की वैसी नेचर बन गई। आप उसको अच्छे परिवार में ले आओगे तभी वो नेचर छोड़ेगा नहीं। कहते ये बहुत शायद गरीब घराने का है, ऐसे घर का पैदा हुआ है, नेचर बन गई। उस नेचर का परिवर्तन, बाबा ने ब्राह्मण नेचर बनाई हमारी, शूद्रपने की नेचर को चेंज किया, इस प्रकृति को चेंज किया। और दूसरी प्रकृति ये पांच तत्वों की शरीर है। शरीर के अंदर भी अगर एक तत्व की भी कमी हो गई पांचों में से तो शरीर बेकार हो जाएगा। तीसरी प्रकृति बाह्य प्रकृति है, जिसके आधार से हम सब यहां जीवन जी रहे हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अविनाशी सत्ता है। एक भी डिस्टर्ब है इसके अंदर तो योग खेल नहीं चलेगा सृष्टि का। इसलिए आज का वैज्ञानिक चिंतित है, सोच रहा है कि पता नहीं ये दुनिया चल पाएगी आगे कि नहीं चल पाएगी। बाबा ने तो हम सबको स्पष्ट ज्ञान दिया है, बताया है ये अनादि अविनाशी सृष्टि है, परिवर्तन इसका नियम है, कलयुग जाएगा सत्युग आएगा। तमो प्रधान प्रकृति परिवर्तित होगी और सत्युग में सतो प्रधान प्रकृति दासी के रूप में सेवक बनेगी, लेकिन उसको इतनी जल्दी परिवर्तन करने के लिए योगी बच्चों की जरूरत है। बाबा तो करेगा ही, लेकिन हम सब भी कम से कम रोज आधा घंटे इस प्रकृति को दान दें। बाबा की शक्तियां लो, किरणें आ रही हैं और बहुत श्रेष्ठ संकल्प के आधार से पांचों तत्व पावन बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, सुखदायी बन रहे हैं। शुभ भावनाओं का दान ही योगदान है। तो हम जितना अपने विचारों को पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली बनाते हैं, उतना हमारा योग दूसरों को परिवर्तन करने में मदद करता है। तो चाहे संस्कार हैं, चाहे बीमारियां हैं, चाहे संबंधों की रुकावटें हैं, चाहे कोई भी प्रकार का विघ्न है, अगर हम बहुत सच्चे दिल से बाबा कहते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, तो वो शक्तियां उसको सहज परिवर्तन कर सकती। बाबा अकेले कुछ नहीं करेगा, बच्चों के माध्यम से ही करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रयोग करो, योग से नहीं करो, योगी प्रयोगी बन जाओ। और इसके लिए अंतर्मुक्ता की बहुत जरूरत है। बाह्य मुक्ता के जितने रस हैं, अगर बाह्य मुक्ता के रस आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं, बाह्य मुक्ता के रस जानते हैं हम सब, सुनने के, बोलने के, खाने के, देखने के, बहुत सारे रसों में कर्मेंद्रियां लिप्त हो गई हैं। जब तक ये रस समाप्त नहीं हुए हैं तब तक एक रस स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए हरेक ये चेक करे जरूर कि कोई भी रस मुझ आत्मा को इंद्रिय रस आकर्षित तो नहीं करता। जितना हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे उतना बाबा के साथ जुड़ जाएंगे और बाबा की शक्तियां आएंगी और उनका हम प्रयोग कर सकते। तो ऐसे सभी प्रयोगी बनो। और हमारा लक्ष्य है कि हम अपने भारत के अंदर तो कर ही रहे हैं, इसके साथ बहुत सारे विदेशी लोग भी इसमें जुड़े हैं। हमारे मॉरिशियस में कई भाई, मैं गया था थोड़े समय पहले, अच्छे अच्छे फार्म बना करके अच्छे योग के प्रयोग कर रहे हैं, खेती पर, नैरोबी में भी कर रहे हैं, मॉरिशियस में भी कर रहे हैं, यहाँ पर जर्मनी के अंदर वहां पर भी एक भाई था जिसने फार्म बनाया था, वो भी योग के प्रयोग करवा रहा था। तो कई स्थानों पर विदेश के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है, इस प्रोजेक्ट को। और मधुबन जब आते हैं तो हमारे भाई लोग को ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छी इसकी रिजल्ट है। ठीक है, अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है?
Southern part of India as well. I am from South.
South में भी हमारा एक तो कर्नाटक में हमारे पास दो तीन साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मैसूर में भी एक दो भी हैं, बेंगलोर में भी हैं। तो कई स्थानों पर हमने इसकी ट्रेनिंग दी है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम खुद कर्नाटक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलकर वहां पर भी इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, और जहां जहां भी इंटरेस्ट रखते हैं, तमिलनाडु में भी, मैं कोयम्बतूर में खुद यूनिवर्सिटी में गया, जहां इंटरेस्ट रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताते हैं, और जो इसको ऑर्गेनिक तक आएगा तो हम योगी बना देंगे। ऑर्गेनिक पर तो आना पड़ेगा उसको, अगर ऑर्गेनिक ही नहीं करना चाहता है तो हम केमिकल पर प्रयोग नहीं कराते। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को?
थैंक यू, इट्स ऑल राइट, या
बोलो। हमने एक तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इतने स्टेट तो कवर कर लिए हैं, और अभी महाराष्ट्र का इस साल हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 32-33 अभियान हम निकालेंगे नवंबर में। गवर्नमेंट सहयोग देती है हमको, पूरा सहयोग वो देती है। वो लोग किसानों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, और उनके आने जाने का खर्चा, भोजन का वो प्रबंध करते हैं, और हमारी बहनें वहां पर प्रवचन देती हैं। गवर्नमेंट के अधिकारियों के सहयोग से बहुत सहज होता है, तो आजकल तो बहुत सरकार हमारी भारत की जागी हुई है इस विषय में, और बहुत अच्छी मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ में तो खुद ही कृषि मंत्री आया रायपुर में, और उसने सारा सर्कुलर निकाल दिया, उनके डायरेक्टर ने सर्कुलर निकाला कि इस डेट को इस स्थान पर अभियान आएगा, आप लोग किसानों की गोष्ठी करो, इकट्ठा करो, और ये लोग आकर के उनको ट्रेनिंग देंगे। तो 15 दिन का अभियान चला, 7 अभियान निकाले पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही हमने हिमाचल में किया था, तो वहां पर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 ही डिस्ट्रिक्ट कवर किए और पूरा गवर्नमेंट का खर्चा कराया। यूपी में भी पूरा गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का खर्चा कम से कम किया, और पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने इसको कवर किया। ऐसे खर्चा वो करते हैं, सेवा हम करते हैं, क्योंकि किसानों को इकट्ठा करना सहज नहीं होता, वो राजा लोग होते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत टॉक किया इस बारी 15 अगस्त को। हाँ हाँ, उसको दिखाया है हमने, और हमारा एक पंडाल दिल्ली में लगा था, तो प्राइम मिनिस्टर खुद विजिट किया था, और हमारे किसानों ने उसको गाइड किया था। हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक यौगिक खेत का निकलता है, तो गुजरात में एक मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री, राज्य मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी, अहमदाबाद में रहते हैं, और गांधीनगर में हमारी एक बहन यौगिक खेती 2 एकड़ जमीन पर करती है। उसमें जो सब्जियां निकलती हैं उसके पास भेज देती है खाने के लिए, और हमने एक बार फूड फेस्टिवल रखा वहां पर। टोटल यौगिक खेती से सब चीजें जितनी उगाई थी, पैदा की थी, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ यहाँ, क्योंकि गुड़ हमारे पास मधुबन में भी सब यौगिक खेती का आता है, कई चीजें अभी यौगिक खेती की आने लगी हैं। तो पूरा एक फूड फेस्टिवल हमने रखा, और उसमें उसको बुलाया, पुरुषोत्तम रूपाला को। उस पुरुषोत्तम रूपाला की और मोदी की बहुत दोस्ती है, वो एक ही स्टेट के, एक ही स्थान के हैं। उसने उनको गाइड किया कि ब्रह्मा कुमारी का ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको पता है सब, इसलिए ऑर्गेनिक पर वो जोर देता है, और आध्यात्मिक शक्ति कहता है, योग कैसे डायरेक्ट हो जाता है ना, योग तो हमारा राजयोग है, तो उनके पता सब है गवर्नमेंट को, सबका सहयोग भी मिल रहा है। ठीक है जी,
योग का जो प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कहा इमर्ज करते हैं, जैसे बहने जो है फार्म को इमर्ज करती है, या फिर बाबा के सामने बीज रखते हैं तो उसको बीज जैसे शकास दे तो वो कमेंट्री देते हैं, माना खुद तो फोकस करना पड़ता है वो करने के लिए।
हम लोगों ने इसकी अलग अलग कमेंट्री की किताब बनाई है, जब जिस समय की जिस कमेंट्री की जरूरत है वही संकल्प रचना है, तो उसकी हमारी किताब बनी हुई है हिंदी में, अभी कई भाषाओं में वो भी ट्रांसलेशन हुई है। तो उसी ढंग से योग करते हैं, मान लो पानी दे रहे हैं तो क्या संकल्प करें, खाद दे रहे हैं तो क्या संकल्प करें, अगर कीड़े आ गए हैं तो क्या संकल्प करें, योगी खेती, योगी खेती भाग एक भाग दो, दो भाग में बनी हुई है। भाग दो में पूरी कमेंट्री और पूरी खादे और भाग एक में बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण। हमने कर्नाटक में भी, कन्नड़ा में भी किया है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, सब जगह ट्रांसलेशन बहुत सारी भाषाओं में करवा लिया है, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, एक भाग इंग्लिश का है।